नुमा साम में हमारे समक्ष ज्ञान सागर निराकारी निर्विकारी निरहंकारी परमपिता परमात्मा की अति समीप अनन्य रतन आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी उपस्थित हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। आपको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप बाल्यकाल से ही उस परम शक्ति परमात्मा की आपको गोद मिली। 25 वर्षों से आपने अपने जीवन को अलौकिक बनाया है और 15 वर्षों से ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दी हैं। आदरणीय दादी जी जो हमारे बीच में नहीं हैं, उनका आपको सानिध्य प्राप्त हुआ, आप अंग संग उनके रहे। वर्तमान में आप महिला विंग की मधुबन कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपने अनेक कोर्सेस कराए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप एक बहुत कुशल राजयोग शिक्षिका भी हैं, जो मधुबन में राजयोग शिविर चलते हैं उनको आप बहुत ही कुशल रूप से उनका संचालन करते हैं, शिविर आदि कराते हैं। आदरणीय दीदी जी द्वारा हम सुनेंगे निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी।
बाबा, इस सीजन में हम बच्चों को प्रेरणा देते रहे हैं, हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है और उसके लिए बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है। आप सबको भी मालूम है कौन सी सहज विधि बताई है, फॉलो फादर कर। इस बार भी बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा के जो 10 कदम हैं बाबा ने जो उठाए, उस कदम पर कदम हमें रखना है। और दुनिया में तो नकल करने के लिए मना करते हैं, लेकिन यहाँ बाबा हमें कहते हैं कि आप ब्रह्मा बाबा की नकल करो। जो ब्रह्मा बाबा ने संकल्प बोल और कर्म किए, वैसे ही हमारे संकल्प बोल और कर्म होने चाहिए। तो जब भी कोई संकल्प चलते हैं, मुख से बोलते हैं या जो भी कर्म करते हैं, पहले उसको चेक कर लो कि ये ब्रह्मा बाबा जैसा है, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा किया था या ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसा करते। तो अगर नहीं करते तो वो हमें नहीं करना है। और यदि मन में आता है ये निर्णय कि हाँ बाबा ऐसा करते, तो फिर वो हमें करना है। तो बाबा ने जब अंतिम क्लास कराई थी तो ये शब्द कहे थे, निराकारी निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है, क्योंकि बाबा ने स्वयं उस स्थिति को प्राप्त कर संपूर्णता को प्राप्त किया, कर्मातीत बने बाबा। तो हम बच्चों को भी बाप समान बनना है। तो क्यों बाबा हमें कहते हैं निराकारी स्थिति बनानी है? निराकारी स्थिति में सर्व गुण और सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। ये आत्मा का अनादि स्वरूप है। जब हम परम धाम में अपने उस स्वरूप को महसूस करते हैं तो ये संपूर्ण पवित्र सर्व शक्तियों के सार का स्वरूप है, संपूर्ण स्थिति है आत्मा की। और जैसे ही हम उस निराकारी बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करते हैं, हम अपनी उस ऊंची स्थिति को सहज अनुभव कर पाते हैं। आत्मा में ही सर्व गुण समाये हैं, जैसा हम जब पहली बार बाबा के घर में आते हैं और हम आत्मा का लेसन सुनते हैं तो हमें समझाया जाता है आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शुद्ध है, पवित्र है। तो स्वयं को आत्मा समझने से, आत्मिक स्थिति में रहने से ये गुण स्वतः व्यवहार में आते हैं, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है। तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतना दूसरे भी हमसे वो महसूस करते हैं, वो रूहानियत हम में दिखाई देती है, हमारी दृष्टि और वृत्ति लोगों को न्यारी महसूस होती है। आज की मुरली में भी आपको ध्यान होगा, बाबा ने बहुत इस बात पर अटेंशन दिलवाया कि एक सेकंड में जब चाहो इस देह से न्यारे हो जाओ। हो सकते हैं, बाबा ने अभ्यास भी कराया आज की मुरली में कि अभी अभी एक सेकंड में सब बातों से न्यारे होकर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। तो जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वो आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सके। बहुत कर्म में व्यस्त हैं, कारोबार का बहुत विस्तार है, और उस समय आपको कहा जाए आत्मिक स्थिति का अनुभव करो तो क्या हम वो अपनी स्थिति बना सकते हैं? तो जितना देह से न्यारी स्थिति का अभ्यास हमारा अभी से होगा उतना वो अंत समय में भी हमें काम आएगा। उस समय भी हम देह और देह के संबंधों से सहज न्यारे हो सकेंगे। पर होता क्या है, सुबह क्लास में आते हैं, योग करते हैं या अमृत वेले योग करते हैं तब तो थोड़ा समय आत्मिक स्थिति रहती है, वो भी थोड़ा समय, पूरा समय रहती है नहीं। सारा दिन कर्म करते हैं, कारोबार कर रहे हैं तो भूल जाते हैं, पूरी तरह देह अभिमान में आ जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। चलो बॉडी कॉन्शियस नहीं होते तो भी कर्म कॉन्शियस तो रहते हैं, जो कर्म कर रहे हैं बुद्धि पूरी तरह उसमें लगी हुई है, फिर चाहे सेंटर पर रहते हैं, चाहे प्रवृत्ति में घर गृहस्थ संभाल रहे हैं, चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहां भी। फिर शाम को जब योग का समय होता है और अगर हमने योग के लिए समय निकाला, योग में बैठे, तो फिर थोड़ा समय आत्मिक स्थिति बनाई। और अगर रात को सोने से पहले अगर हमारा नियम है कि बाबा को गुड नाइट करके ही सोना है, जैसे बाबा ने हमें पिछली मुरली में कहा कि बच्चे गुड नाइट करें या ना करें लेकिन बाबा जरूर बच्चों से गुड नाइट करते हैं, तो फिर उस समय हो सकता है कि कुछ पलों के लिए हम उस आत्मिक स्थिति को अनुभव करते हैं और बाकी सारा दिन देही अभिमानी स्थिति नहीं रहती है। और इसीलिए बाबा को रोज रोज हमको मुरली में याद दिलाना होता है। कोई मुरली ऐसी नहीं होती जिसमें बाबा ये नहीं कहता कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, देही अभिमानी स्थिति में रहो। क्योंकि देही अभिमानी स्थिति ही संगम युग का वर्षा हमें दिलाती है, बाबा की अविनाशी प्राप्तियों का अनुभव कराती है। जब हम आत्मा समझते हैं तभी हमारा योग बाबा से लगता है, आत्मा समझेंगे तो परमात्मा याद आएगा। हाँ, जैसे कोई ये समझते हैं, बहन समझती है कि मैं माँ हूँ तब उसे बच्चे याद आते हैं, अगर समझते हैं मैं टीचर हूँ तो स्टूडेंट याद आते हैं, समझते हैं मैं डॉक्टर हूँ तो पेशेंट याद आते हैं, वो संबंध है। ऐसे ही आत्मा का संबंध परमात्मा से है, आत्मा समझेंगे तो बुद्धि की लाइन क्लियर होगी और बाबा से हम एकाग्रता से योग का अनुभव कर पाएंगे, नहीं तो बुद्धि व्यर्थ संकल्पों में जाती है, इधर उधर की बातों में सहज चली जाती है। और जो ज्वालामुखी योग की स्थिति का अनुभव होना चाहिए, जो लगन में मगन स्थिति का अनुभव होना चाहिए, लवलीन स्थिति का अनुभव होना चाहिए योग में, वो अनुभव नहीं होता है। वो तभी होगा जब हम निराकारी स्थिति में बाबा को याद करेंगे। अशरीरी स्थिति इस तरह की स्थिति है कि यदि उस स्थिति में हमें कोई शारीरिक रोग भी होता है, मानो कोई दर्द हो रहा है या कोई तकलीफ हो गई उस समय और हमने अपनी आत्मिक स्थिति या शरीरी स्थिति बनाई, तो वो दर्द हमें महसूस नहीं होगा या बहुत कम महसूस होगा, जिसे हम आसानी से सहन कर लेंगे, क्योंकि कर्म भोग कर्म योग में बदल जाता है। वो हमारा डायरेक्ट बाबा से लिंक होना, यानी हमारी फ्रिक्वेंसी बाबा से मैच करती है। जैसे कहेंगे बाबा भी निराकारी है और आत्मा भी निराकारी है, तो जैसे ही हम निराकारी स्थिति में होते हैं वो परफेक्ट ट्यूनिंग होती है और उससे वो शक्तियां जो मन को मिलती हैं और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव होती है, उससे हमारी बीमारी का स्वरूप भी बदल जाता है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि डॉक्टर अगर इंजेक्शन लगाते हैं, अगर विज्ञान ये काम कर सकती है कि विज्ञान की दवाइयों से आप एनर्जी अनुभव कर सकते हो, तो क्या शिव बाबा की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? था ना आज की मुरली में बाबा ने ये बात कही। तो निराकार स्थिति हमारे लिए वो काम करती है कि हम सीधे बाबा की शक्तियों को स्वयं में अनुभव करते हैं और उन शक्तियों से हम तन के कर्म भोग हिसाब किताब पर भी सहज विजयी होते हैं और वो हमारा कर्म भोग सूली से कांटा बन जाता है। वो बाबा की जैसे हमारे लिए दुआएं हो जाती हैं, तो दवा और दुआ दोनों का मिलन उसे बहुत जल्दी समाप्त कर देता है। तो रोज हमें अटेंशन दे करके इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है ना हमको, तो ब्रह्मा बाबा ने शुरू शुरू में, जैसे ही बाबा को आत्मा का ज्ञान हुआ, बाबा ने लिख लिख कर भी उसका अभ्यास किया। सारे दिन बाबा डायरी में लिखते थे और अपने परिवार के एक एक सदस्य के नाम से, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, राधिका बाबा की बहू का नाम था, जसोदा आत्मा है। और जब तक बाबा को पक्का नहीं हो गया, बाबा ने उस अभ्यास को छोड़ा नहीं। दादियां भी सुनाती हैं कि शुरू में जब 14 वर्ष हमने तपस्या की तो हमारा मुख्य अभ्यास यही रहता था, हम अपने को आत्मा ही समझते थे और सदा दूसरे को भी आत्मा देखते थे ना, सिर्फ खुद को ही नहीं समझना है लेकिन दूसरों को भी, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं उनको भी आत्मिक दृष्टि से देखना है। तो आत्मिक दृष्टि अगर है तो वो शुद्ध दृष्टि वृत्ति है, शुभ भावना की दृष्टि वृत्ति है। देह पर नजर जाती है तो कई तरह के भाव पैदा हो सकते हैं, लेकिन जब आत्मा पर नजर जाती है तो शुद्ध भाव ही पैदा होगा, आत्मिक भाव ही पैदा होगा, अपनेपन का भाव जिसे बाबा कहता है, या अव्यक्त भाव, वो भाव ही पैदा होगा। और आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति या निराकारी स्थिति से जो भी हम निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, वो निर्णय हमारे सही निर्णय होते हैं, उसमें हमारी निर्णय शक्ति बढ़ जाती है। तो सही समय पर सही निर्णय शक्ति साक्षी स्थिति से आती है, निराकारी स्थिति साक्षी स्थिति है। बाबा हमें कई बार कहते हैं कि हमें साक्षी और साथी अवस्था का अनुभव करना है, तो साक्षी स्थिति का अनुभव तब होगा जब हमारी अशरीरी निराकारी स्थिति का हम अनुभव करेंगे, और विशेष अमृत वेले जब हम इसका अभ्यास करते हैं, क्योंकि अमृत वेले का जो समय है वो समय हमारा मन स्वाभाविक शांत होता है, प्रकृति भी शांत होती है, वातावरण भी शांत होता है, तो हमें निराकारी स्थिति का अनुभव करना आसान होता है। उस समय हम बिंदु रूप स्थिति या बाबा को भी परम धाम में निराकारी रूप में याद सहज कर पाते हैं। तो वो विशेष अभ्यास हमें अमृत वेले करना चाहिए, और अमृत वेले अगर वो अनुभव हमें हो गया, सारा दिन फिर हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर हम सहज बीच बीच में उस आत्मिक स्थिति को अनुभव करते रहेंगे। और फिर हर घंटे में भी हमें लक्ष्य रखना चाहिए, भले हम जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी हम कार्य करते हैं, कि मैं दो मिनट भी एक मिनट भी अपनी उस आत्मिक स्थिति का अनुभव कर लूं। सेकंड में न्यारे हुए और फिर कर्मेंद्रियों के द्वारा मैं कर्म कराने वाली आत्मा मालिक हूं, जो हमने आज की मुरली में भी सुना। बाबा ने कहा सदा याद रखना है कि मैं करण करावन हार हूं, शरीर की कर्मेंद्रियों से कराने वाली मैं आत्मा मालिक हूं, लेकिन मालिक शिव बाबा है, उस मालिक की बालक हूं। और मेरे द्वारा, मुझ आत्मा के द्वारा करण करावन हार कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा मुझ आत्मा के द्वारा करण करावन हार है और मैं आत्मा कर्मेंद्रियों के द्वारा करण करावन हार हूं। तो सदा ये स्मृति अटेंशन देकर के भी हमें बनानी है कि मैं नमित हूं। और संगम युग पर ये विशेष जो बाबा ने हमें स्मृति दी है, ये हमें न्यारा बनाती है, न्यारा और प्यारा बनाती है। जितना हम न्यारे हैं देहे और देहे के संबंधों से, उतना ही हम प्यारे बनते हैं, उतना ही अन्य आत्माएं हमसे ये महसूस करती हैं कि इनको कुछ विशेष प्राप्ति है, ये योगी हैं, इनमें रूहानियत की शक्ति है। तो आपको सेवा बोलकर नहीं करनी पड़ेगी, आपका स्वरूप ही सेवा करेगा। उसको बाबा कहता है चेहरे और चलन से सेवा करो। लेकिन अगर निराकारी स्थिति नहीं है, सारा दिन देह अभिमान में ही गुजर गया, तो हम भी उन लोगों की तरह ही दिखाई देते हैं, वो न्यारापन हमारे में नजर नहीं आता है। तो स्मृति का ही न्यारापन है और उस न्यारेपन को हमें अनुभव करना है। फिर दूसरा बाबा निर्विकारी स्थिति के लिए कहते हैं, निर्विकारी स्थिति अर्थात संपूर्ण पवित्र स्थिति। जब आत्मा में विकार का अंश वंश भी ना हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आलस्य भय, हाँ ये सब बाबा कहते हैं विकार हैं। तो मोटे रूप में जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं, हमारे सब विकार छूटने लगते हैं। कहते हैं कि देह अभिमान ही सब विकारों की जड़ है। तो देह अभिमान कम होने लगता है तो विकार भी अपने आप कम होने लगते हैं। लेकिन उनका जो अंश वंश है, माया का वो जो रॉयल रूप है या सूक्ष्म रूप है, उसके लिए बाबा कहते हैं परखने की शक्ति चाहिए। अगर उतनी परखने की शक्ति है तब हम उसको जीत पाते हैं, नहीं तो वो माया अपना चांस लेती रहती है। आज की मुरली में भी बाबा ने इस बात को अंडरलाइन किया कि किसी न किसी व्यक्ति के रूप में, परिस्थिति के रूप में माया अपना चांस ले लेती है। तो अगर हम काम विकार की बात करते हैं तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। तो हम ज्ञान में आते ही इसको अंडरलाइन करते हैं, बाबा के श्रीमत के अनुसार अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप में बाबा कहता है यदि मैं किसी से प्रभावित हूँ, मुझे देह की आकर्षण नहीं है लेकिन और भी आकर्षण तो हो सकती है, मानो उसके गुणों से मैं प्रभावित हूँ। कोई भी आत्मा है, किसी के गुण मुझे अच्छे लगते हैं, किसी का सहयोग देना, किसी का बात करना, किसी की पर्सनालिटी वो मुझे अच्छी लगती है, और उस कारण उस आत्मा से मेरा लगाव है, यानी मेरी बुद्धि बार बार उस आत्मा की तरफ जाती है या मेरा मन बार बार उसकी तरफ जाता है, एक्स्ट्रा स्नेह जिसे बाबा कहता है, जहां भी बुद्धि बार बार जाती है इसका मतलब वो काम विकार का अंश है। तो वो हमें चेक करके चेंज करना है, और उसकी निशानी है योग में हम बैठेंगे तो हमारी बुद्धि बाबा की तरफ नहीं जाएगी। जिस आत्मा की तरफ आपका आकर्षण है, बुद्धि उस आत्मा की तरफ जाएगी, आप उसे ज्यादा याद करेंगे, बाबा की बजाय उस आत्मा को ज्यादा याद करेंगे। तो आप बाबा से शक्ति नहीं ले रहे, बाबा से आपको स्नेह और शक्तियों का अनुभव होना बंद हो जाता है। और आत्मा की शक्तियां तो सीमित हैं, आप आत्मा को याद करेंगे तो क्या प्राप्ति होने वाली है? प्राप्ति नहीं होगी बल्कि हिसाब किताब बन रहा है। तो जहां भी योग में आपको ऐसा अनुभव होता है, कि कोई आत्मा मेरे योग में विघ्न डाल रही है, तुरंत हमें उसे चेक करके पुरुषार्थ करके चेंज करना है। वो अंश वंश भी काम का हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा बाबा कहता है क्रोध की बात। तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो क्रोध को भी हम मोटे रूप में जीत लेते हैं। हम बोल बोल कर चिल्ला कर गुस्सा नहीं करते, ये सब हम बंद कर देते हैं, है ना। और हमारे घर वाले भी महसूस करते हैं कि जब से ये आश्रम में जाते हैं तब से इनके अंदर बहुत अच्छा परिवर्तन आया है। ये पहले बहुत गुस्सा करते थे लेकिन अब गुस्सा नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका अभी भी कंट्रोल नहीं है, ब्राह्मण बनने के बाद भी, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि काम विकार जिसे दुनिया मुश्किल समझती है उससे तो बाबा के बच्चे जीत लेते हैं, लेकिन क्रोध को जीतना, जो हमारे शास्त्रों में भी यादगार है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हुए जैसे विश्वामित्र, दुर्वासा, वो भी अपने क्रोध को नहीं जीत पाए। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों के साथ होता है कि और विकार तो जीत लेते हैं लेकिन गुस्से को जीतना जरा मुश्किल होता है। कई बार बाबा ने हमें ये होमवर्क भी दिया है कि हमें बिल्कुल क्रोध मुक्त बनना है। तो आप क्या समझते हैं कि बाबा के ज्ञान में आने के बाद आपका क्रोध बिल्कुल खत्म हो गया है, या कभी कभी गुस्सा आ जाता है? कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, वो तो आएगी, तभी गुस्सा आएगा। जो समझते हैं कि हमने पूरी तरह, हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, मन में भी नहीं आता है, बोल के तो नहीं करते हैं लेकिन मन में भी नहीं आता है, मन में तो आ जाता है ना अगर बोल के नहीं करते हैं तो, वो हाथ उठाएं। बहुत कम, इतनी बड़ी सभा में से 10-15 हैं जो हाथ उठा रहे हैं कि हमें गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। वो भी अगर उनके साथियों से पूछें तो सही पता चलेगा कि आता है कि नहीं आता है। जो साथ में रहते हैं वो हमें ज्यादा जानते हैं, है ना। तो खैर, जो भी कारण से अगर हम गुस्सा करते हैं तो फिर हमें वो चेक करना है और चेंज करना है। गुस्से का सूक्ष्म रूप बाबा कहता है, मानो किसी ने मेरी बात नहीं मानी। गुस्सा सामान्यता ऐसे ही आता है, किसी ने मेरी बात नहीं मानी या किसी ने कोई गलती कर दी, आप जो चाहते हैं वैसा वो नहीं कर रहे हैं, तो गुस्सा आने का कारण बनता है। तो यहाँ हमें समझना है कि बाबा ने कहा हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, आप जैसा सोचते हैं वैसा वो आत्मा नहीं सोचती है, उसका सोचने का ढंग हमसे अलग हो सकता है। तो अगर हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो हम उसकी भी बात समझने की कोशिश करें कि वो हमारी बात क्यों नहीं मान रही है, और अगर उसका कारण सही है, कई बार वो सही होते हैं हम गलत होते हैं, तो फिर हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए, तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन हम समझते हैं कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहम होता है, मैंपन होता है, नहीं मेरी बात मानी ही जानी चाहिए, जो मैंने कहा है वो होना ही चाहिए, वो करना ही चाहिए, उसको लेकर के गुस्सा आता है। लेकिन जब हम बाबा के ज्ञान को यूज करेंगे सही समय पर तो वो गुस्से की स्थिति नहीं आएगी। और फिर बाबा कहता है आप शांति के अवतार हो, आप शांति की शक्ति वाले हो। मानो आप घर में हैं, आपके पति ज्ञान में नहीं चलते हैं, आप ज्ञान में चलते हैं। कई कई बहनों को बंधन होता है, अब आप जो भी करते हैं, आप सेंटर पे जाएंगे तो भी वो गुस्सा करेंगे, आप बाबा के लिए कुछ भी कार्य करेंगे तो भी वो गुस्सा करेंगे, आप मधु बनाना चाहते हैं या आपकी धारणाओं के लिए जो भी आप धारणाएं करना चाहते हैं वो उनको जरा भी पसंद नहीं है, चाहे वो खाने पीने की धारणा है, चाहे वो पवित्रता की धारणा है, तो फिर अब हमें साथ वहां प्रवृत्ति में रहना तो है। बाबा ने तो नहीं कहा है कि घर बार छोड़ना है, जो भी मेरा कर्म बंधन है उसे मुझे गुस्सा करके चुप्तू करना है, उनका सामना करके चुप्तू करना है, या शुभ भावना शुभ कामना से अपने सहयोग की शक्ति से उसे चुप्तू करना है। तो हमने देखा है कि ऐसे भी बहुत बाबा की बहुत प्यारी माताएं होती हैं जो कई वर्षों तक, हो सकता है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष तक वो ये अपनी अपना पुरुषार्थ करती रहती हैं कि अब शुभ भावना शुभ कामना से वो कैसे उनके दिल को जीतें, और फिर उनके पति भी ज्ञान में आ जाते हैं, और कई बार ये देखा जाता है कि वो उनसे फिर ज्ञान में आगे जाते हैं। वो शक्ति इतना कार्य करती है, लेकिन अगर हम भी उस बात को लेकर के सामना करते हैं तो फिर ज्ञान में आने के बाद भी शांति का अनुभव नहीं होगा, और ही लगेगा कि जीवन में विघ्न ही विघ्न है, जीवन में कष्ट ही कष्ट है। तो बाबा ने जो हमें समझ दी है, जो ज्ञान की शक्ति दी है, शांति की शक्ति दी है, उसे हमें यूज करना है। और जब हम उसे बार बार यूज करेंगे, हो सकता है एक बार दो बार दस बार आप कर रहे हैं नहीं काम कर रहा वो, लेकिन आपने हिम्मत रखी तो बाबा की मदद आपको मिलने ही वाली है, और एक दिन जरूर वो परिवर्तन उनमें नजर आएगा। लेकिन वो धीरज हमें रखना होता है, चाहे बच्चों के लिए भी आप करते हैं, मानो बच्चे भी कभी हो सकता है आपकी बात नहीं मानते हैं, या आप जैसा चाहते हैं बच्चे नहीं कर रहे, आप चाहते हैं वो ज्ञान में चले, लड़की ब्रह्मा कुमारी बने, शादी नहीं करे, ऐसी कई बातें माता पिता सोचते हैं बच्चों के लिए और नहीं हो रहा है, आपके अनुसार नहीं चलते हैं बच्चे, तो उनका पार्ट है ना, आप उनको मार्गदर्शन करो, सहयोग दो। अगर वो करते हैं तो बहुत अच्छा, उनका भाग्य, और नहीं करते हैं तो भी बहुत अच्छा, उनका भाग्य, उनका पार्ट है, उस आत्मा का पार्ट है। मेरा जो फर्ज है वो मैं निभाऊं बाबा की याद में। हमें साक्षी होकर के अपने कर्तव्य कर्म करने हैं, और जितना हम उस स्थिति से न्यारे प्यारे होकर के अपने घर गृहस्थ में भी कार्य करेंगे, क्रोध की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। और इसीलिए बाबा कहता है क्यों क्या कैसे में नहीं जाना है, जितना हम प्रश्नों में जाते हैं। अब कई बार किसी ने मेरा अपमान कर दिया, हो ही जाता है, आए दिन कोई ना कोई ऐसा तो हिसाब किताब वाला सामने आ जाता है जो आपको दो बातें ऐसी कह देता है जो आप सुनना नहीं चाहते, आपको पसंद नहीं है, फिर फीलिंग आती है, और फीलिंग आती है तो फिर हम क्यों क्या में जाते हैं, इसने ऐसा क्यों कहा, इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और अगर वो ज्ञानी है तो और ज्यादा, अज्ञानी है तो हम सहन कर लेते हैं, हम सोचते हैं इनकी हमको सेवा करनी है, कोई बात नहीं कह दिया, इनको समझ नहीं है, फिर भी हम उनसे प्यार से बात करेंगे, अच्छी तरह बात करेंगे ना, उनको समझाएंगे। लेकिन कोई ज्ञानी आत्मा, ब्राह्मण आत्मा ने अगर ऐसा कर दिया तब तो हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है इनको भी ज्ञान है फिर भी ऐसा करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें कहा है हमारे सारे हिसाब किताब यहाँ ही चुप्त होने हैं। आपने कभी उस आत्मा का अपमान किया होगा पहले, तो वो आप अपना ऋण चुकाएगी कि नहीं चुकाएगी, तो आप ये समझो कि मेरा कर्ज खत्म हुआ, और मेरा कर्ज खत्म हुआ तो मैं आत्मा हल्की हो गई। ग्लानी करने वाले का भी गायन करना है, ये बाबा ने हमें कहा। और मानो कोई ऐसी बात है जो हमें ऐसा लगता है कि सचमुच ये गलत कर रहे हैं और हमारा फर्ज है इनको कहना, तो उस समय नहीं बोलो, उसी समय अगर हम कहते हैं ना तो थोड़ा आवेश होता है, हम उसको गुस्से में बोल जाते हैं, उसको बाबा कई बार कहता है मुख में मुलहरा डाल दो, उसी समय नहीं बोलना माना चुप रह जाना, मुख में कुछ डालेंगे तो बोल सकेंगे, नहीं बोल सकेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद अगर हम वो बात कहते हैं तो हम वही बात समझाते हैं, लेकिन प्रेम से समझाते हैं, शांति से समझाते हैं, थोड़ा उनको रिस्पेक्ट देकर कहते हैं, तो वो बात उनको समझ में आती है, और आप जो चाहते हैं वो समाधान भी आपको मिल जाता है। और नहीं तो गुस्से से गुस्से का जन्म होता है और हमारी समस्याएं बढ़ती हैं। फिर कई बार बाबा हमें कहता है आप तो बच्चे मास्टर क्षमा के सागर हो, रहम दिल हो, आज की मुरली में भी था कि आत्माओं के ऊपर अगर हमारा रहम है तो कोई कितना भी बुरा है तो भी हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, कभी उससे ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, नहीं, वो रहम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए। गलती तो करते ही है ना, तमो प्रधान समय है ही कलयुग का समय, तो आत्माओं से हम ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन हम क्षमा करते, हम क्षमा के सागर के बच्चे हैं, हमारे इतिहास में हम सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में हम सुनते हैं, बाबा के सामने कैसे कैसे बच्चे थे, बाबा का कितना अपमान किया। बाबा अपने लौकिक जीवन में इतने सम्मानित थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, रॉयल फैमिली से उनका संबंध था, लेकिन जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, ओम मंडली शुरू हुई, कितना अपमान, कितनी गालियां बाबा को सुननी पड़ी। लेकिन क्या कभी बाबा विचलित हुए? क्या कभी बाबा फीलिंग में आए? सदा उनके प्रति भी रहम का भाव, सदा उन आत्माओं के प्रति भी कल्याण का भाव रहा। यहां तक कि कहते हैं कि बाबा को एक गोली मारने भी आया, एक सरदार जी बाबा को जान से मारने के लिए आया, तो बाबा की स्थिति से उसको गुरु नानक देव का साक्षात्कार हो गया और उसने बाबा को सच सच बता दिया कि बाबा मैं तो आपको मारने के लिए आया था, तो भी बाबा ने उसको क्षमा कर दिया, कुछ नहीं कहा। उसने कहा अच्छा बच्चे, आगे के लिए ऐसा नहीं करना। और भी हम सुनते हैं हमारे जो साधु महात्मा हुए, भारत का इतिहास तो ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है कि कितने भी बुरे लोग उनके जीवन में रहे लेकिन उन्होंने सदा उनको क्षमा कर दी। स्वामी दयानंद के जीवन की घटना है, एक बार एक सन्यासी जो उनकी कुटिया के पास रहता था उसको उनकी किन्हीं बातों से विरोध हो गया, वो जो सिखाते थे, तो गुस्से में आकर जब भी वो देखता था तो उनके लिए गालियां देना शुरू कर देता था, तो वो चुपचाप सुनते थे, कुछ कहते नहीं थे। एक दिन स्वामी दयानंद के पास एक व्यक्ति टोकरा भर के फल लेकर के आया, वो उनके गुरु थे, शिष्य था वो। तो स्वामी दयानंद ने उसको कहा कि ये जो फलों का टोकरा है ये मेरे जो साथी हैं, मेरे पड़ोस में रहते हैं, इनको जाकर दे दो। तो उसने कहा ठीक है, जैसे गुरु जी की आज्ञा। तो वो फल लेकर के वहां गया तो उसने पूछा, तो उसने कहा ये स्वामी जी ने भेजे हैं आपके लिए। तो उसने कहा उन्होंने क्यों भेजे हैं, मैं तो रोज उनको गालियां देता हूँ, वो मेरे लिए फल कैसे भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने ही आपके लिए भेजा है और मुझे खास कहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर वो बाहर निकल के बोलने लगा। तो स्वामी जी बाहर आके उसको कहते हैं कि देखो भाई, आप इतना बोलते हो, आपकी इतनी शक्ति खर्च होती है बोलने में, आप ये फल खाओ तो आप और अच्छी तरह बोल पाओगे, आपको इससे और शक्ति मिलेगी। तो हमारा सोचने का तरीका ही बिल्कुल बदल जाए। जैसे बाबा हमें सिखाते हैं कि दूसरों के प्रति हम बिल्कुल रहम भाव से सोचें, अच्छे भाव से सोचें, फिर वो चाहे कैसी भी आत्मा है तो हमें गुस्सा आएगा ही नहीं, गुस्से की वो स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। फिर अगर हम लोभ की बात करते हैं तो दुनिया जैसा लोभ हमारे में नहीं होता है। बाबा ने हमें अविनाशी कमाई का महत्व समझाया है और बाबा ने कहा है कि ये कमाई जन्म जन्मांतर हमारे साथ जाने वाली है, ये सच्ची कमाई है। तो हमारा पूरा ध्यान इस ज्ञान की पढ़ाई, जो हमारे चार विषय हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें रहने लगता है और हम अपना समय बाबा की सेवा में सफल करते हैं, जो हमारी कमाई और भाग्य बनाने का साधन है। दुनिया में लोग भले ही धन के पीछे भाग रहे हैं, आज भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो लोग किन किन चीजों का होता है, धन का होता है, वस्तुओं का होता है, पहनने ओढ़ने का होता है, खाने पीने का होता है, कई प्रकार का लोभ इंसान के अंदर आ सकता है। तो धन का लोभ तो बाबा के बच्चों को इतना नहीं रहता, कोई कोई होंगे वो रेयर होते हैं, लेकिन ज्यादातर, और जैसे कबीर दास जी ने कहा, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो वो संतोष का गुण, संतुष्टता का गुण बाबा हम बच्चों में भर देते हैं, क्योंकि बाबा हमें बेहद की प्राप्ति कराते हैं, तो हम हद की प्राप्ति के पीछे इतना नहीं जाते। लेकिन दूसरे जो सूक्ष्म अंश वंश हैं लोभ के, खाने पीने का, तो ब्राह्मणों को खाने पीने का वैसे भी प्रसिद्ध होते हैं, दुनिया में भी जो ब्राह्मण होते हैं वो उसमें प्रसिद्ध होते हैं कि यजमान के यहाँ जाएंगे तो अच्छी तरह हाँ वो खाएंगे। तो भोजन में कई बार हम यही होना चाहिए, ये पसंद है, ऐसा खाना मिलेगा तो खाएंगे, और नहीं तो भूखी खत्म हो जाती है। तो बाबा कहता है 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी बहुत अच्छा, और सूखी रोटी और गुड़ मिले तो भी बहुत अच्छा। ये स्थिति है कि हर हाल में हम एक समान हैं, और अंतिम पेपर यही होने वाले हैं। तत्व भी बाबा कहते हैं प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो भी आपका पेपर लेंगे, तो इस रूप में आएगा कि हो सकता है खाने पीने को कुछ भी ठीक से ना मिले, पीने को पानी भी ना मिले। एक मुरली में बाबा ने कहा आप सोने की अंगूठी भी देंगे तो भी पीने का पानी नहीं मिलेगा। बाबा के बच्चों के सामने तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आएगी, लेकिन फिर भी हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना, ऐसा नहीं कि ये मेरा बंधन बन जाए, हाँ कि उसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। ऐसे ही पहनने ओढ़ने के लिए हमें ऐसा ही चाहिए, हाँ, तो यहाँ भी बाबा कहता है कि अगर बहुत अच्छा कपड़ा है, 8-10 ड्रेस, 20 ड्रेस, लालच किसको कहते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना मेरे पास है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम इकट्ठा करते जाते हैं, 50 ड्रेस होंगे लेकिन फिर भी और भी हम ले आएंगे, 20 जूते पड़े हैं फिर भी और भी हम, तो हमें हम क्यों अपना व्यर्थ खर्च करेंगे। हमें बाबा की सेवा में उसे सफल करना है, वो हमारा भाग्य बनाने वाला है, तो जितनी आवश्यकता है उतना ही, उससे ज्यादा का संग्रह हमें नहीं करना है। अगर वो है तो वो लोभ का अंश है। तो बहुत अच्छा कपड़ा मिला तो भी बहुत अच्छा, चतियों वाला मिल गया, कभी पुराना कपड़ा पहनना पड़ता है तो भी खुश है, उतने ही खुश हैं जितना कि नया वस्त्र पहनने में हम खुश होते हैं। और मोह, अगर हम मोह की बात करते हैं तो लोभ और मोह कहते हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोभ होता है इच्छाओं के लिए, जो चीजों की मुझे चाहना है। तो बाबा हमेशा हमें कहता है कि जो साधन है वो भले आप यूज करो, साधन आज के जमाने में विज्ञान के द्वारा हमें बहुत मिले हैं, लेकिन साधन हमारी साधना को डिस्टर्ब नहीं करे। जो हमारा बाबा के साथ योग है वो साधनों की मदद से बढ़ना चाहिए, हमारी योग की स्थिति, ज्ञान की स्थिति बढ़नी चाहिए। अगर वो हमें बढ़ाने में मदद कर रहा है तो सही है, लेकिन अगर उस साधन के कारण मेरी स्थिति में गिरावट आ जाती है, मेरा ज्यादा समय उसमें चला जाता है। कई बार हम देखते हैं आजकल के जो यूथ है ना, उनके हाथ में ऐसे ऐसे मोबाइल होते हैं, या वो लैपटॉप यूज करते हैं, इंटरनेट होता है उसमें, सारा समय वो उसमें लगे हुए हैं और अपना पूरा टाइम और एनर्जी उसमें गंवा रहे हैं, अपने समय को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, वो कमाई साथ में नहीं जाने वाली है ना। तो ऐसे अगर वो साधन हमारे योग को डिस्टर्ब करते हैं तो ऐसे साधन बेकार हैं। और फिर कई बार उसका ये भी लोभ होता है ना, नए नए मॉडल निकलते रहते हैं हर चीज के, आजकल तो हर एक साल में चीजें बिल्कुल नई तरह की निकल आती हैं, फिर वो पुरानी हो गई अब मुझे नई चाहिए, तो अगर हमारी बुद्धि उसमें ही लगी हुई है सारा टाइम, अगर हमारा टाइम और एनर्जी उसमें जा रहा है तो हमारी कमाई तो जमा नहीं हो रही है। तो लोभ होता है चाहना, और मोह होता है जो पहले से मेरे पास है उससे हमें लगाव हो जाता है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, फिर चाहे वो व्यक्ति है वस्तु है। और जितनी मात्रा में हमारा मोह होता है किसी भी वस्तु व्यक्ति से, उतना ही अगर वो खोती है तो हमें दुख होता है, ये मोह की निशानी है। इसलिए कहते हैं मोह ही दुख का कारण है। मानो आपकी कोई बहुत अच्छी चीज है और अचानक गुम हो गई, कोई किसी ने चुरा लिया, वो चाहे मोबाइल ही क्यों ना हो मानो, तो अगर आपको अपना वो मोबाइल बहुत पसंद है, उसमें बहुत मोह है आपका, सारा टाइम आप दुखी होते रहेंगे, इतने संकल्प आपके चलेंगे। और ऐसे तो कितने भी मोबाइल गुम होंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं है। जहां मेरापन है, मेरी चीज गुम हुई, तो हमें दुख होता है। माताएं बैठी हैं, मानो ऐसा होता है कि बच्चा मोटरसाइकिल लेकर के गया और आपने सुन लिया कहीं समाचार कि किसी मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हुआ है, और आपको पता है कि आपका भी बच्चा मोटरसाइकिल लेकर गया है, अब क्या होगा? मेरा बेटा है ना, बेटे में तो मोह होता है, तुरंत चिंता शुरू, दुख शुरू। जब तक कि वो बेटा घर नहीं आ जाएगा, आप परेशान रहेंगे। जैसे ही आपको पता चला मेरा बेटा नहीं, वो कोई और, दुख रहेगा, अभी खत्म। तो जहां मेरापन है, जितना मोह है, उतना हम दुख महसूस करते हैं। लेकिन यही हमको जीतना है, इसलिए बाबा ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये हमारा अंतिम पेपर है। गीता ज्ञान भी पहले अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, आत्मा अजरम अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। और इस तरह से वो ज्ञान समझने के बाद धीरे धीरे उसका मोह नष्ट हुआ, और फिर वो लड़ने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हुआ। तो यहां भी बाबा ने हमें समझाया है, कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति अगर जाता है, चाहे वो हमारे परिवार का कितना ही प्रिय क्यों ना हो, हमने देखा है कई बाबा के बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी होती है, कुछ असर नहीं होता उनके ऊपर, बिल्कुल वो विजयी होते हैं, जरा भी उनको रोना नहीं आता, और जो अपना कर्तव्य करना है वो बहुत सहज रीति से वो अपने फर्ज का पालन भी करते हैं, शुभ भावना शुभकामना भी रखते हैं। लेकिन हर एक नंबरवार है, यथाशक्ति है, तो कईयों के ऊपर वो असर आता भी है। और कई बार ये भी देखा जाता है, कई अज्ञानी भाई बहने जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जीवन में, मानो उनके बच्चे अचानक किसी एक्सीडेंट में चले गए बहुत यंग अवस्था में, या कोई भी ऐसा उनके पति की मृत्यु हो गई, जो भी, और जब वो ज्ञान में आते हैं तो ज्ञान में आने के पहले वो उसे सहन नहीं कर पा रहे। कोई दिन उनका ऐसे नहीं जाता कि वो रोना नहीं पड़ता उनको, हर दिन रोते हैं, उनको याद करके उदास रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब ये समझ में आती है कि ये आत्मा अजन्म और अविनाशी, इसने दूसरा जन्म लिया दूसरे नाम रूप से, और अगर मैं दुखी रहूंगी तो वो दुख उस आत्मा तक भी जाने वाला है, मुझे शुभ भावना शुभकामना रखनी है, हिसाब किताब है। वो हिसाब किताब था, पूरा हुआ, उसके बाद वो भी धीरे 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 उनमें परिवर्तन आ जाता है, वो दुख उनका कम महसूस होता है उन्हें। तो जो ज्ञान बाबा ने हमें समझाया है, जितना हम उसे यूज करते हैं उतना हम विकारों पर सहज विजयी बनते जाते हैं, वो हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है। ऐसे ही अगर हम अहंकार की बात करते हैं तो अहंकार को बाबा ने डबल अंडरलाइन किया है। अहंकार पांच विकार में भी आता है, और अहंकारी बाबा ने अलग से निरहंकारी शब्द कहा। तो क्योंकि मैं पन जो है, या देह अभिमान जो है, वो बहुत पुरुषार्थ करने से, बहुत अटेंशन रखने से ही खत्म होता है। जैसे ज्ञान में आए तो देह अभिमान मोटे रूप में हम समझते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, या मैं धनवान हूं, जो भी है वो हम सहज समाप्त कर लेते हैं, वो भाव या वो स्मृति हम नहीं रखते, और समझते हैं कि ये कर्म मेरा है, ये मुझे अपना कर्म करना है, और अच्छी तरह मुझे अपना ये कर्तव्य निभाना है, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूं, और हम नम्रता से सबसे व्यवहार करते हैं। लेकिन सूक्ष्म अंश बाबा कहता है, उसकी निशानी है कि अगर सूक्ष्म मैपन है मेरे अंदर, तो मैं अपने आप को हमेशा राइट समझती हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो राइट है, मैं जो कर रही हूँ वो राइट है। हम बदलना नहीं चाहते, हम दूसरे को बदलना चाहते हैं। इसने गलती की, ये गलत बोल रहे हैं, इनको बदलना चाहिए। तो अगर हमेशा मुझे ये भावना रहती है तो इसका मतलब वो सूक्ष्म मैपन मेरे अंदर है। तो अहंकार वाला कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, अपनी गलती को वो सिद्ध करेगा, जिद और सिद्ध जिसे कहते हैं ना। और दूसरों पर हम आसानी से दोष लगाएंगे, इसने ऐसा किया ना इसलिए ऐसा हुआ, अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मेरी गलती है और हम मान लेते हैं, कई बार हम सॉरी भी बोलते हैं, मानो हमसे हो भी जाती है गलती, ऐसे तो है नहीं कि नहीं होती है, जीवन है, कभी ना कभी ऊपर नीचे हो जाता है। और अगर हमसे गलती हो गई, हमने सॉरी बोला, बात वहीं खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि हमारा उसमें नाम कम हो जाता है। कई बार लोग समझते हैं अगर मैंने अपनी गलती मान ली ना तो मेरा नाम कम हो जाएगा, मेरी कमजोरी समझी जाएगी। हम अपना नाम कम नहीं होने देना चाहते, किसी की नजरों में गिरना नहीं चाहते हैं, उसे बचाने के लिए, जैसे बाबा कई बार कहते हैं चालाकी से चलते हैं। लास्ट संडे को जो मुरली थी जो बाबा ने सत्यता के ऊपर चलाई, कि फिर हम थोड़ा चालाकी से चलना शुरू करते हैं, जिसे हम युक्ति कहते हैं। लेकिन अभी वो नाम मान शान हमारा भले बच जाएगा, लेकिन सदा काल के लिए बाबा के दिल पर हमारा नाम नहीं रहेगा और अविनाशी प्राप्ति से भी हम वंचित हो जाएंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि हमने तुरंत अपनी गलती मानी तो थोड़ा हमें सहन कर लेना पड़ेगा, हो सकता है थोड़ा हमें दो चार बातें सुन लेनी पड़े उसी समय, लेकिन वो वहीं का वहीं खत्म। और बाबा की मदद और मिलेगी क्योंकि हमने बाबा की आज्ञा का पालन किया, जिसको हमने सहन किया। फिर अगर अहंकार है तो वो कभी भी दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहते, दूसरों की तारीफ नहीं सुन सकते हैं। अगर आपके सामने किसी की तारीफ की जा रही है, उनकी विशेषता है, वो बात कही जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उनकी एक दो जो कमियां हैं, अब कमियां भी हर एक में होती हैं, तो हो सकता है हमारे व्यवहार में वो कमियां दिखाई दी हों उनकी, तो हम वो जरूर सुनाएंगे, अरे आपको पता नहीं है, ये भी है उनके अंदर, आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर। तो हमें उनकी वो तारीफ अच्छी नहीं लगती, जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं। तो ईर्ष्या का जो भाव होता है वो अहंकार होने पर या सूक्ष्म में देहाभिमान होने पर तुरंत जागृत हो जाता है, इसलिए हम उनका सम्मान नहीं कर सकते, माना दिल से हम रिस्पेक्ट से उनसे बात नहीं करेंगे। हम हमेशा आशा करेंगे दूसरे मेरा सम्मान करें। और अभिमान है तो बाबा कहता है अपमान की फीलिंग भी जल्दी आती है, बहुत जल्दी फीलिंग में चले जाएंगे। लेकिन अगर अभिमान नहीं है तो फिर हमें फीलिंग नहीं आती है, जो बात जैसी है वैसे हम समझकर तुरंत अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, हमारे अंदर वो महसूसता की शक्ति होती है और महसूसता सहज परिवर्तन करा देती है। तो बाबा ने जैसे अपने जीवन में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति बनाई, ऐसे ही हम बच्चों को भी वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति बनानी है। मैंने कहा जैसे हमने ज्ञान में आने के बाद जरूर ये स्थिति के ऊपर पुरुषार्थ किया है, काफी हद तक हम बाबा के बच्चे इसमें सफल भी होते हैं, लेकिन उसके जो सूक्ष्म स्वरूप हैं उन्हें हम पहचाने और उन्हें पहचानते हुए उस डिफाइंड पुरुषार्थ को करके अपने अंदर पूरा बाप समान परिवर्तन ला करके बाबा समान स्थिति बना सकें, यही बाबा की हम बच्चों के प्रति शुभ आशाएं हैं। ओम शांति।
कौन इतना प्यार आपके सिवाय के सिवाय